पृष्ठ संख्या 19। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रादुर्भाव। 1906 तक दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न प्रकार के विधेयक पारित करके लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। आखिर अत्याचार और शोषण को सहने की भी कोई सीमा होती है। सब्र का बांध टूटते ही किसी न किसी रूप में अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन उठ खड़ा होता है। ठीक यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत एशियाई लोगों के साथ हुई। रंगभेद नीतियों, कानूनों व ढोंगपूर्ण व्यवहार के विरोध में गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ। जगह जगह सभाएं की गईं और हर सभा में सर्वानुमति से विधेयक का विरोध करने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए। पृष्ठ संख्या 20। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि गांधी ने सबसे पहले इस आंदोलन का नाम पैसिव रेजिस्टेंट दिया था, किंतु जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, इस नाम के कारण उलझन भी बढ़ती गई। गांधी को इस आंदोलन को अंग्रेजी नाम देना उपयुक्त नहीं लगा, अतः उन्होंने मगनलाल के सतग्रह शब्द को संशोधित करके सत्याग्रह का नाम दिया। गांधी ने सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसात्मक सत्याग्रह को अपनाया। गांधी का कहना था, यद्यपि हम अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए हिंसा करने की क्षमता रखते हैं, फिर भी यदि हिंसा से ऊपर उठकर हम अहिंसा के मार्ग को अपनाएं, तो यह हमारी महानता होगी। हिंसा से प्राप्त की हुई विजय क्षणिक होती है, अस्थाई नहीं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा अपनाई गई सत्याग्रह की रणनीति। गांधी का सत्याग्रह एक आदर्श कर्मयोग का व्यवहारिक दर्शन है। जहाँ कहीं भी अन्याय है, असत्य का सामना करना पड़े, वहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया जाना चाहिए। सत्याग्रह हर परिस्थिति में अहिंसात्मक होता है। इसमें शुद्धतम आत्मबल का ही प्रयोग किया जाता है। गांधी कहा करते थे, अहिंसा की वर्णमाला परिवार की पाठशाला से सीखी जाती है और फिर उसका प्रयोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा सकता है। गांधी मानते थे कि सत्याग्रह एकमात्र अस्त्र है जिसके द्वारा बुराई तथा अन्याय का अस्थायी प्रतिरोध संभव है। यह साफ सुथरा व अहानिकारक होने के बावजूद अत्यधिक प्रभावशाली साधन है। यह न केवल अन्याय और बुराई के प्रतिकार का साधन है, बल्कि एक सोचने का तरीका तथा जीवन पद्धति भी है। जीवन की अनेकता में जो एकता होती है, उसमें सत्याग्रह संपूर्ण आस्था रखता है। सामाजिक जीवन में भी सत्याग्रह की वही महत्वपूर्ण भूमिका है जो व्यक्तिगत जीवन में होती है। सामाजिक कुरीतियों के निराकरण में सत्याग्रह सर्वाधिक प्रभावशाली अस्त्र है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की दो विधियों को अपनाया, क रचनात्मक सत्याग्रह, ख आक्रामक सत्याग्रह। रचनात्मक सत्याग्रह। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रचनात्मक कार्य किए। पृष्ठ संख्या 21। पहला, विचार पत्रों का प्रकाशन। इसके अंतर्गत ग्रीन पैफलेट एवं इंडियन ओपिनियन मुख्य थे। 1896 में जब गांधी कुरलैंड जहाज से मुंबई से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने पायोनियर पत्र के अंग्रेज संपादक से मुलाकात की और उसी पत्र में दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के संबंध में लेख लिखा। संपादक ने उस लेख पर टिप्पणी लिखकर उसे प्रकाशित किया। नेटाल वापस जाने पर गोरों ने गांधी पर जो अभद्र आक्रमण किया था, उसका बीज पायनियर में ही बोया गया था। राजकोट जाकर गांधी ने इसी विषय पर एक पुस्तिका लिखी। हरे रंग का कवर होने के कारण इसका नाम ग्रीन पैम्फलेट पड़ा। इसकी 10,000 प्रतियां छपवा कर उन्होंने भारत में तथा भारत के बाहर भेजी, जिससे लोगों को दक्षिण अफ्रीका की वास्तविक स्थिति की जानकारी हो सके। 1906 में गांधी की सहमति ने इंडियन ओपिनियन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इंडियन ओपिनियन डरबन से निकलता था, यद्यपि मनसुख लाल नागर अखबार के अवैतनिक संपादक थे, किंतु संपादन का सारा भार गांधी पर ही था। इंडियन ओपिनियन गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन का प्रतिबिंब था। इसी पत्रिका के माध्यम से सत्याग्रह का खूब प्रचार प्रसार हुआ तथा सत्याग्रह एक आंदोलन के रूप में शक्तिशाली हुआ। दूसरा, दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा सत्याग्रह का सबसे प्रारंभिक कदम है। जब दक्षिण अफ्रीका में 22 अगस्त 1906 को ट्रांसवाल सरकार ने एशियाटिक बिल का मसौदा प्रकाशित किया, तो इसका विरोध करने के लिए 11 सितंबर 1906 को ट्रांसवाल में एक सभा हुई। इस सभा की अध्यक्षता अब्दुल गनी ने की। सभा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि इस बिल के विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद यदि वह धारा सभा में पास भी हो जाए तो हिंदुस्तानी उससे हार न माने और इसके फलस्वरूप उन्हें जो कष्ट भोगना पड़े उसे बहादुरी से भोगे। सभा के एक वक्ता सेठ हाजी हबीब ने, जो दक्षिण अफ्रीका के पुराने और अनुभवी हिंदुस्तानी निवासी थे, अपने जोशीले भाषण में कहा, हमें प्रस्ताव पास करना चाहिए कि ऐसे कानूनों के सामने हम कभी नहीं झुकेंगे। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि इस कानून के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं इस सभा में आए हुए सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि वे खुदा को साक्षी मानकर ऐसी ही कसम खाएं। गांधी को सेठ हाजी हबीब का सुझाव बहुत पसंद आया। गांधी ने लोगों को प्रतिज्ञा का अर्थ विस्तारपूर्वक समझाया। गांधी ने कहा, हम ईश्वर को साक्षी मानकर ऐसी प्रतिज्ञा करें और उस पर कायम रहें। पृष्ठ संख्या 22। ऐसा न करने से हम कौम, दुनिया और ईश्वर की निगाह में अपराधी माने जाएंगे। गांधी ने बताया कि ऐसे समय में भी अगर हम अपना सब कुछ दांव पर न लगा दें और हाथ पर हाथ रखकर सोच विचार में ही पड़े रहें तो हम अयोग्य और कायर सिद्ध होंगे। इसलिए यह अवसर कसम या प्रतिज्ञा करने का है। गांधी ने कहा, अगर हिंदुस्तानी यह प्रतिज्ञा कर सके और उस पर डटे रहे तो सरकार को यह बिल अवश्य ही वापस लेना पड़ेगा। बिल का विरोध करने से हमें बहुत कष्ट भी हो सकता है। इस संघर्ष के संभावित परिणामों की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। संभव है हमें जेल जाना पड़े तथा जेल में अपमान भी सहना पड़े। वहाँ हमें भूख, ठंड और धूप का कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। कड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। जेल में मार भी खानी पड़ सकती है। हम पर जुर्माना भी हो सकता है। हमारी संपत्ति को जब्त करके नीलाम भी किया जा सकता है और अंततः देश निकाले की सजा भी हो सकती है। गांधी ने सभा को बताया कि एक ओर तो मैं आपको प्रतिज्ञा लेने के खतरों से आगाह कर रहा हूँ और दूसरी ओर आपको कसम खाने की प्रेरणा भी दे रहा हूँ। यह कसम खाने की शक्ति हम में है या नहीं, इसके लिए तो प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने दिल को टटोलना होगा। यदि वह अपने कसम पर टिका रह सके तभी उसे कसम खानी चाहिए, अन्यथा नहीं। सभा के अंत में सभी लोगों ने खड़े होकर हाथ ऊँचे करके ईश्वर को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा ली कि बिल पास होने पर यदि कानून का रूप ले लेगा तो भी हम उसके सामने सर नहीं झुकाएंगे। तीसरा, ईश्वर से सन्मति की प्रार्थना। गांधी ने ईश्वर से प्रार्थना की, मुझे और मेरे विपक्षी ट्रांसवाल की सरकार दोनों ही को ऐसी सन्मति दें कि एक दूसरे के पक्ष को समझ सकें। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन करने से पूर्व अनेक बार ट्रांसवाल सरकार से यह आग्रह किया कि वह प्रस्तावित एशियाटिक बिल को पास करे। यदि वह ऐसा करती है तो एशियाई लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएगी। इसी संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल उपनिवेश मंत्री डंकन से मिलने भी गया। अन्य बातों के अलावा उसने कौम के लोगों द्वारा ली गई प्रतिज्ञा की बात भी उपनिवेश मंत्री को बताई। स्त्रियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार संबंधी धाराएं वापस लेने का भी आग्रह किया गया, परंतु उपनिवेश मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की एक भी बात नहीं मानी। उन्होंने यही दोहराया कि जनरल बोथा चाहते हैं कि आप पूरा विचार करके यह कानून स्वीकार कर लें। सरकार गोरों के अस्तित्व के लिए इस कानून को जरूरी मानती है। पृष्ठ संख्या 23। परंतु प्रतिनिधिमंडल को यह सुझाव स्वीकार नहीं था। चौथा, राजनीतिक सभाएं। गांधी ने हिंदुस्तानियों को सत्याग्रह करने की जानकारी देने के उद्देश्य से राजनीतिक सभाएं की। सभा में हिंदुस्तानियों को सत्याग्रह के नियमों से परिचित करवाया और उनसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुकूल पालन करने के लिए आग्रह किया गया। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अनेक सभाएं की, जिनमें से कुछ सभाएं तो अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। उदाहरण के तौर पर ट्रांसवाल में हुई हिंदुस्तानियों की सभा, जो एशियाटिक बिल का विरोध करने के लिए बुलाई गई थी, तथा 1907 में प्रिटोरिया की वह महत्वपूर्ण सभा जिसमें हिंदुस्तानियों को खूनी कानून से सावधान करने के उपाय सुझाए गए। इस सभा में जनरल बोथा ने विलियम हॉस्किन को हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए भेजा कि वे एशियाटिक एक्ट को मान लें। सभा में अहमद मोहम्मद कछालिया ने बहुत जोशीला भाषण दिया और कहा, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन इस कानून के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि यह सभा भी ऐसा ही निश्चय करे। सभा ने इस भाषण का जोरदार स्वागत किया। जनरल स्मट्स द्वारा विश्वासघात करने पर ट्रांसवाल की एक सार्वजनिक सभा में हिंदुस्तानियों ने अपने परवाने जला डाले। सत्याग्रह के अंतिम चरण में गांधी ने न्यू कैलस में मजदूरों के साथ एक महत्वपूर्ण सभा की, जिसमें उन्होंने मिल मालिकों की बात बताने के साथ साथ जेल के दुखों को भी बताया, किंतु मजदूरों ने गांधी के साथ मिलकर संघर्ष करने व उनका साथ निभाने का वायदा किया और उसे पूरा करने का प्रयत्न भी किया। पांचवा, तर्क, बातचीत एवं समझौतों द्वारा मतभेद दूर करना। गांधी का विचार था कि व्यक्ति गलती या तो सत्य की जानकारी न होने से करता है या फिर स्वार्थ अथवा दुर्भावना से प्रेरित होकर करता है। गांधी का विश्वास था कि यदि विरोधी को सत्य का ज्ञान करा दिया जाए तो वह अपनी भूल सुधार सकता है। इसलिए गांधी ने ट्रांसवाल की सरकार को अनेक बार समझाने की कोशिश की, एशियाटिक बिल क्रूर तथा अन्याय पर आधारित है। यह और बात है कि गांधी के लाख समझाने के बाद भी एशियाटिक बिल पास हो गया। गांधी का कहना था कि सत्याग्रही को अपने विरोधी अथवा विपक्षी के साथ समझौता करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, बातचीत का रास्ता कभी रोकना नहीं चाहिए। पृष्ठ संख्या 24। गांधी को जनरल स्मट्स एवं अन्य लोगों के साथ समझौता करने का अनेक बार मौका मिला। ऐसे अवसर पर उन्हें पहली बार 30 जनवरी 1908 को मिला था। जनरल स्मट्स ने गांधी से कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग यदि इच्छा से परवाने ले लेंगे तो मैं एशियाटिक एक्ट को रद्द कर दूंगा, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा से परवाने ले लेने के बाद भी जनरल स्मट्स ने बिल को रद्द नहीं किया। उसने गांधी के साथ विश्वासघात किया, लेकिन जनरल स्मट्स के इस गंभीर आघात से सत्याग्रह के प्रति गांधी की आस्था स्थिर पड़ने के बजाय और भी अधिक दृढ़ हो गई। 1914 में गांधी ने जनरल स्मट्स को पत्र लिखा कि यदि सरकार हिंदुस्तानियों के साथ न्याय ही करना चाहती है तो मुझे आपसे मिलने और आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दीजिए। जनरल स्मट्स ने गांधी की बात मान ली। गांधी जनरल असमठ से मिलने प्रिटोरिया गए। गांधी ने पाया कि जनरल असमठ पहले से थोड़ी नरमी आई है और वे समझौता करने के लिए तैयार हैं। जब असमठ ने गांधी से यह कहा कि आपकी जो मांगे हैं उन्हें स्वीकार करने का हमने निर्णय कर लिया है, तो गांधी को लगा कि उन्हें उनका हृदय परिवर्तन करने में एक अप्रत्याशित सफलता मिली है। छठा, हिंद स्वराज। 1909 में गांधी ने इंग्लैंड से लौटते हुए जहाज पर हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक में स्वराज के चरम आदर्श तथा उसकी प्राप्ति के लिए सत्याग्रह के अचूक साधन की सार्थकता को दिखाना था। यह पुस्तक सत्याग्रह की सफलता में निहित गांधी की निष्ठा तथा सच्चा मापदंड भी प्रस्तुत करती है। सातवां, नेटाल इंडियन कांग्रेस। गांधी ने 22 मई 1894 को हिंदुस्तानियों के हितों की रक्षा के लिए एक अस्थायी नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख संस्था बन चुकी थी। कांग्रेस की शक्ति को बढ़ाने के लिए गांधी ने नेटाल की अस्थायी संस्था का नाम भी कांग्रेस रखा था। इसका सदस्य बनने के लिए लोगों को 3 पाउंड वार्षिक चंदा देना पड़ता था। नेटाल इंडियन कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि वहाँ के भारतीयों को संघबद्ध करना, उनमें राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना तथा उनके कष्टों के निवारण के लिए संघबद्ध आंदोलन करना। कांग्रेस का दूसरा मुख्य काम था अफ्रीका में उत्पन्न हुए भारतीयों की सेवा करना। इसके लिए कांग्रेस की ओर से उपनिवेश में रहने वाले भारतीयों की शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। शिक्षा परिषद में भारतीयों की स्थिति पर विचार किया जाता था। इसमें छोटे बड़े सभी लोग अपनी स्थिति से अवगत रहते थे और उसके अनुसार काम करते थे। कांग्रेस का तीसरा काम प्रचार करना था। इससे दक्षिण अफ्रीका के गोरों में, भारत तथा इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों की वास्तविक स्थिति का पता चलता था। आठवां, सेवा भावना। गांधी का कहना था कि सेवा करके यदि मन को संतोष व आनंद न मिले तो उसकी कोई सार्थकता नहीं है। संकोच व या दूसरे को दिखाने के लिए जो सेवा की जाती है वह मनुष्य को नीचे गिराती है तथा नीरस बना देती है। अतः गांधी कहते हैं कि सच्चे मन से लगन के साथ दूसरों की सेवा की जानी चाहिए। गांधी सेवा कार्य करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में एक कुष्ठ रोगी उनके घर आया। गांधी ने उसे एक कमरे में रखा तथा उसकी सेवा की। गांधी को जब कभी समय मिलता तो वे अस्पताल में जाकर स्वयं सेवक का काम करते। डरबन में गांधी के घर में ही उनके क्लर्क भी रहते थे। रात में पेशाब करने के लिए प्रत्येक कमरे में एक पेशाब पात्र रहता था जिसे गांधी तथा कस्तूरबा साफ करते थे। सन 1899 में बोरों के साथ अंग्रेजों का युद्ध शुरू हुआ। गांधी ने सैनिकों की सेवा करने के लिए 1100 स्वयंसेवकों को तैयार किया, जिनका काम था युद्ध में घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से अस्पताल पहुंचाना तथा वहां उनकी देखभाल करना। सरकार ने गांधी के कार्य को सराहा। उनके इस कार्य से उनके विरोधी भी उनके परम मित्र बन गए। दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों को कूली कहा जाता था, जिसका सामान्य अर्थ मजदूर होता है। जोहान्सबर्ग के कूली लोकेशन में अचानक प्लेग फैला और उसकी भीषणता बढ़ने लगी। उस समय गांधी ने अपने भारतीय तथा अंग्रेज मित्रों के साथ मिलकर प्लेग पीड़ित रोगियों की निस्वार्थ सेवा की। दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह भी हुआ। यह पारंपरिक युद्ध न होकर मात्र मनुष्यों का बेखटके शिकार था। प्रातःकाल से ही जुलुओं को खोज खोज कर ढूंढा व मारा जाता था। यदि गांधी अपने दल के साथ उनकी सेवा में तत्पर न होते तो अनगिनत अन्यायपूर्वक घायल जुलू बिना चिकित्सा के ही मर जाते। इसी सेवा कार्य में रत रहते समय गांधी ने ब्रह्मचर्य पालन का दृढ़ संकल्प भी किया था। नवा, विरोधी को दुख न पहुंचाना। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गांधी यह कभी नहीं चाहते थे कि विपक्षी गोरों को किसी प्रकार का दुख पहुंचाए या उनका किसी प्रकार का नुकसान हो। पृष्ठ संख्या 26। वे तो केवल हिंदुस्तानियों को न्याय दिलाना चाहते थे। जब वायव्य कोण के मजदूरों ने हड़ताल की, उस समय कुछ कटा हुआ गन्ना यदि उचित स्थान पर मिल में न पहुंचाया जाता तो गोरे मालिकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। इसलिए उस गन्ने को यथास्थान पहुंचाने के लिए 1200 हिंदुस्तानी मजदूर फिर से काम पर लग गए और काम पूरा होने के बाद ही अपने साथियों के साथ हड़ताल में शरीक हुए। इसके अलावा जब डरबन म्यूनिसपलिटी के गिरमिटिया लोगों ने हड़ताल की, तब उसमें भी जो लोग भंगी का या जो अस्पताल का काम करते थे उन्हें काम पर भेज दिया गया और वे खुशी से वापस काम पर आ गए। गांधी का कहना था कि सत्याग्रही जो भी कदम उठाए उससे विरोधी की स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार करना चाहिए। 10वां, मानव मात्र में विश्वास। सत्याग्रह की एक मूल नीति है मानव मात्र में विश्वास। जब गांधी ने जनरल असमठ से 1909 में समझौता किया तो कुछ लोगों ने समझौते के संबंध में शंका व्यक्त की थी, किंतु गांधी का कहना था कि सत्याग्रही को अपने विरोधी की बात पर विश्वास करना चाहिए। यदि विरोधी ने 20 बार विश्वासघात किया हो तो भी सत्याग्रही 21वीं बार विरोधी पर विश्वास करने को तैयार रहे, क्योंकि सत्याग्रही की नाव तो विश्वास से ही चलती है। 11वां, टॉलस्टॉय फॉर्म। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जोहान्सबर्ग के नज़दीक कैलनबैक द्वारा खरीदी गई जमीन पर टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया। टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रहियों के परिवारों को रखने के लिए बड़े बड़े घरों का निर्माण किया गया, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी श्रद्धा प्रेम के साथ मिलजुल कर रहते थे। फॉर्म के सभी काम नियमानुसार होते थे। अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। फॉर्म में गांधी तथा कैलनबैक लोगों को शिक्षा भी देते थे। गांधी ने फॉर्म का उद्देश्य बताया, हमारा काम सत्याग्रही परिवारों को उद्यमशील बनाना, पैसा बचाना और अंत में स्वावलंबी बनाना था। ख, आक्रामक सत्याग्रह। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रचनात्मक कार्य के साथ साथ आक्रामक सत्याग्रह को भी अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सरकार को सत्याग्रहियों के सामने झुकना पड़ा। जिस समय सत्याग्रही जानबूझकर किसी कानून को भंग करने के लिए अप्रत्यक्ष कार्यों द्वारा अन्याय पर हमला करने लगता है, तब उसे सत्याग्रह का आक्रामक स्वरूप कहा जाता है। इसके साथ ही सत्याग्रही दमन और कष्ट सहन को भी निमंत्रण देता है। इतना ही नहीं, अन्याय का अंत करने के प्रयत्न में वह मरने तक के लिए भी तैयार रहता है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित तरीकों को अपनाया। पृष्ठ संख्या 27। पहला, हड़ताल। हड़ताल का उद्देश्य है अस्थायी समय के लिए अन्याय के विरुद्ध अपने प्रतीकात्मक प्रतिरोधों को प्रदर्शित करना। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया लोगों के साथ मिलकर अनेक बार हड़ताल की। जब मजदूर सत्याग्रह संघर्ष में शामिल हो गए तो खदान मालिकों ने उन्हें विभिन्न तरीकों से तंग करना शुरू किया, जैसे उनका पानी बिजली काट देना आदि। गांधी ने मजदूरों को मालिकों द्वारा किए गए झोपड़े छोड़ने को कहा। सभी मजदूर गांधी के पास चले गए। गांधी ने हड़ताल का संचालन किया। हड़ताल से मिल मालिकों पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने गांधी को बातचीत करने के लिए बुलाया। मिल मालिकों ने गांधी से मजदूरों की हड़ताल तुड़वाने और उन्हें काम पर लौट आने का आग्रह करने की बात कही। गांधी ने कहा कि जब तक 3 पाउंड का टैक्स रद्द नहीं हो जाता, मजदूर काम पर नहीं लौटेंगे। हड़ताल के दौरान हजारों सत्याग्रहियों को सरकार ने गिरफ्तार किया, इन पर घोड़े दौड़ाए, गोलियां बरसाई, फिर भी मजदूर अपनी मांग पर डटे रहे। दूसरा, कर टैक्स न देना। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने समय समय पर अनेक बार हिंदुस्तानियों पर अन्यायपूर्ण तथा अनुचित कर लगाए, जिसका हिंदुस्तानियों ने विरोध किया। 1894 में गिरमिटिया भारतीयों पर प्रतिवर्ष 25 पाउंड का टैक्स लगाने का प्रस्ताव नेटाल सरकार ने किया। इसका एकमात्र कारण हिंदुस्तानियों को दक्षिण अफ्रीका में बसने से रोकना तथा उन्हें भारत लौटने पर मजबूर करना था। दक्षिण अफ्रीका के गोरे यह प्रस्ताव लेकर लॉर्ड एल्गिन के पास गए। वे 25 पाउंड टैक्स मंजूर न कर 3 पाउंड टैक्स लगाने पर राजी हो गए। 3-4 वर्षों के अंदर ही यह 3 पाउंड कर स्त्रियों, उनके 14 वर्षीय बालकों तथा 13 वर्षीय बालिकाओं पर भी लागू कर दिया। गांधी ने कर न देने की सलाह दी। 20 वर्ष के आंदोलन के बाद सरकार को इस अमानुषिक कर को रद्द करना पड़ा। तीसरा, सामाजिक बहिष्कार। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने अश्वेत एशियाई लोगों की भावनाओं की अवहेलना की, इसलिए सत्याग्रहियों ने ट्रांसवाल की सरकार के प्रति सामाजिक बहिष्कार की नीति अपनाई। गांधी के अनुसार जनमत की अवहेलना होने पर सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत असहयोग के मार्ग को अपनाया गया। चौथा, परवाना जलाना। 1908 में गांधी के साथ जनरल स्मट्स ने समझौता किया कि यदि हिंदुस्तानी सुरक्षा से परवाना ले लेते हैं तो खूनी कानून को रद्द कर दिया जाएगा। पृष्ठ संख्या 28। परवाने के अंतर्गत व्यक्ति के दोनों हाथ के छापे देने पड़ते थे। सुरक्षा से परवाना लेने के बाद भी सरकार ने खूनी बिल को रद्द करने का अपना वादा नहीं निभाया। तब सत्याग्रहियों ने एक सार्वजनिक सभा में अपने परवाने जला डाले। पांचवा, आत्मपीड़न। आत्मपीड़न के द्वारा सत्याग्रहियों ने ट्रांसवाल की सरकार को जीतने का प्रयास किया। गांधी ने सत्याग्रह की पद्धति में आत्मपीड़न को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वे सत्याग्रह को आत्मपीड़न का नियम अथवा सत्य के लिए तपस्या बताते थे। गांधी का विश्वास था कि आत्मपीड़न के द्वारा विरोधी के हृदय पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा तथा वह अपनी भूल का एहसास करेगा। गांधी के अनुसार सत्याग्रही को अपने ऊपर बड़ा संयम रखना चाहिए तथा विरोधी की किसी भी बात में उत्तेजित नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह की लड़ाई तो मूल वस्तु के लिए ही करनी चाहिए, और मूल वस्तु काले कानून हैं। छठा, उपवास। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों ने आंदोलन करते समय जेल में उपवास भी किया। गांधी के अनुसार उपवास अन्याय का विरोध करने का एक प्रभावी साधन है। इसके द्वारा बुराई करने वाले का हृदय परिवर्तन किया जाता है। गांधी ने लिखा है, दक्षिण अफ्रीका का डायक्यूलिफ जेल अत्यंत कष्टदायक है। वहाँ का जेलर बहुत कड़ा था। इस जेल के कैदी कड़ी मेहनत करने को तैयार थे, किंतु जेलर द्वारा किए जाने वाले अपमान को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। अतः कैदियों ने जेलर को हटाने के लिए उपवास शुरू किया। सत्याग्रही अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहे और अंततः 7 दिन के उपवास के बाद जेलर को बदल दिया गया। टॉलस्टॉय फार्म पर दो आश्रम वासियों के अनैतिक काम करने पर गांधी ने 7 दिन का उपवास किया। गांधी का कहना था, जो लोग मेरे संरक्षण में हैं उनके भूल चूक के लिए मैं उत्तरदायी हूँ, अतः जो भी गलत काम करेगा उसके लिए मैं प्रायश्चित करूँगा। गांधी के उपवास के बाद फॉर्म में कभी भी किसी ने कोई गलत काम नहीं किया। सातवां, जेल भरो। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही कानून भंग कर अनेक बार जेल गए। गांधी का विश्वास था कि अन्याय और अत्याचार के विरोध में कानून भंग कर जेल जाने को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जेल में जितने अधिक सत्याग्रही होंगे सरकार की उतनी ही अधिक बदनामी होगी। वहां अधिक से अधिक सत्याग्रहियों ने अपने को गिरफ्तार करवाया। निश्चित अवधि के अंतर्गत जब हिंदुस्तानियों ने परवाने नहीं लिए तब सरकार ने उन्हें बदले की भावना से गिरफ्तार करना शुरू किया। पृष्ठ संख्या 29। सत्याग्रही यह जानते थे कि उन्हें जेल में अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ेंगे, फिर भी उन्होंने अपने को गिरफ्तार करवाया। जेल जाने का सिलसिला 21 वर्षों तक चलता रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी का प्रयोग ने सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में सफलतापूर्वक किया। गांधी के सत्याग्रह का प्रभाव दक्षिण अफ्रीका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि विभिन्न देशों में भी अपने स्वतंत्रता आंदोलनों में अहिंसात्मक सत्याग्रह का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया। भारत में स्वतंत्रता दिलाने में गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अहिंसात्मक सत्याग्रह प्रयोग को अद्वितीय सफलता मिली। संदर्भ: पहला, राम गोपाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, लखनऊ, सुलभ प्रकाशन, 1986। दूसरा, सामी, शब्द कूली की भांति दक्षिण अफ्रीका में घृणा सूचक भाव के रूप में व्यक्त किया जाता था। तीसरा, रामगोपाल, उपरोक्त संख्या 18, 261। चौथा, मोहनदास करमचंद गांधी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, अहमदाबाद, नवजीवन प्रकाशन मंदिर। पांचवा, वही। छठा, प्रभात कुमार भट्टाचार्य, गांधी दर्शन, जयपुर, कॉलेज बुक डिपो। सातवा, वही। आठवा, वही। नवा, वही। दसवा, वही। ग्यारहवा, वही। बारहवा, मोहनदास करमचंद गांधी, उपरोक्त संख्या 4, 365। तेरहवा, वही। चौदहवा, वही। पंद्रहवा, रंगनाथ दिवाकर, सत्याग्रह मीमांसा, नई दिल्ली, सस्ता साहित्य मंडल, 1949। सोलहवा, विनय कुमार गंगोपाध्याय, मृत्युंजय गांधी जी, कलकत्ता, जनवानी प्रेस एंड पब्लिकेशन। सत्रहवा, मोहनदास करमचंद गांधी, उपरोक्त संख्या 4, 67।